आगे सबक देखिए भाई, वला बी उम्मी ही मीनर रजाती वला बी उख्त ही मीनर रजा लिकौली ही ताला व उम्मातुकुम उल्लाती अरज़ानकुम व अखवातुकुम मीनर रजा व लिकौली अलैहि सलाम يحرم من الرزاع ما يحرم من النسب ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا بملك يمين وطأ. भाई गुज़श्ता सबक में मुहर्रमात के बारे में साहिब हिदाया ने बयान करना शुरू किया था, यानी वो औरतें जिनके साथ निकाह हराम है. मैंने आपको बतलाया कि मुहर्रमात दो किस्म पर हैं, कुछ मुहर्रम है मुअब्बद भाई हमेशा के लिए, और कुछ मुहर्रम है मुअक्कत भाई कुछ वक्त के लिए, यानी वहां कोई मानेअ मौजूद होता है. हुर्मत मुअब्बदा है, मसलन माँ है, बहन है, बेटी वगैरह, इनको महरम कहते हैं, जो इंसान पर हमेशा हमेशा के लिए हराम है और वहां निकाह की कोई सूरत नहीं. तो ये मुहर्रमात मुअब्बदा हैं और इनको महरम कहते हैं. और कुछ मुहर्रमात मुअक्कता हैं, यानी कुछ वक्त के लिए वहां निकाह नहीं हो सकता, कोई मानेअ मौजूद है. जब वो मानेअ चला जाएगा फिर निकाह जायज होगा. मसलन जैद की मनकूहा है, वो जैद के निकाह में है, तो कोई और इससे निकाह नहीं कर सकता क्योंकि जैद से उसका निकाह हो चुका है. हां, अगर जैद ने उसको तलाक दे दी या जैद का इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद कोई दूसरा उसके साथ निकाह कर सकता है भाई. साहिब कुदूरी ने बतलाया कि किसी शख्स पर उसकी मां और उसकी दादियां नानियां जो हैं वो हराम हैं, चाहे वो मर्दों की तरफ से हों यानी बाप की तरफ से हों, और चाहे औरतों की तरफ से यानी मां की तरफ से हों. तो ये सब दादियां नानियां इंसान पर हराम हैं. और दलील जिक्र फरमाई थी कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, कि तुम पर तुम्हारी माएं हराम कर दी गई हैं. अब यहां सवाल पैदा हुआ कि उम्महात जमा है उम की, और उम मां को कहते हैं. इस आयत से तो सिर्फ मां की हुर्मत का पता चला, ये दादियों नानियों की हुर्मत के लिए ये आयत कैसे आप दलील बना सकते हैं? तो साहिब हिदाया ने बतलाया था कि उम जो है अरबी जुबान में असल को कहते हैं. मैंने बतलाया था एक है असल और एक है फरा. असल जो है वो जड़ को कहते हैं और फरउन ये शाख को कहते हैं. जड़ें होंगी तो उससे आगे तना और शाखें निकलेंगी, जड़ें नहीं तो शाखें और तना भी नहीं हो सकते. तो जड़ें हैं असल, तो जड़ों को उसूल कहते हैं, और शाखें फरा हैं, और फरा की जमा फुरूअ, तो शाखों को फुरूअ कहते हैं. तो यहां पर उम्महात का जिक्र आया और उम जो है अरबी जुबान में असल को कहते हैं, और ये दादियां नानियां ये सब भी क्या हैं? इंसान के लिए असल हैं. तो अरबी जुबान के एतबार से इन सब पर उम का लफ्ज बोला जाता है. ये सब उम हैं, मां भी उम यानी असल है, दादियां नानियां भी उम यानी असल हैं भाई. तो यानी कहना ये चाहते हैं साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया कि ये दादियों नानियों की हुर्मत भी आयत ही से साबित है, या इनके लिए दलील जो है वो इजमा है कि तमाम फुकहाए इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक और इजमा है कि दादियों नानियों से यानी अपने उसूल में जो औरतें हैं उनसे निकाह जायज नहीं है भाई. और इसी तरह आयत में आया वह बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां भी तुम पर हराम हैं भाई. और इसी तरह आगे आयत में आया वह अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें भी तुम पर हराम हैं. और मैंने बतलाया था कि बहनें तीन किस्म पर हैं, या वो बहन हकीकी होगी या अल्लाती होगी या अख्याफी होगी. हकीकी बहन वो है कि उस शख्स का और उसकी बहन दोनों के मां बाप एक ही हों. बाज़ औकात दोनों के मां बाप एक ही होते हैं, बाज़ औकात दोनों का बाप एक होता है मां अलग अलग, और बाज़ औकात मां एक होती है और बाप अलग अलग. मसलन एक शख्स है, उसकी बहन है, दोनों के मां बाप एक ही हैं, यानी उस आदमी के जो मां बाप हैं वही उसकी बहन के भी मां बाप हैं, तो इसको उसकी हकीकी बहन कहेंगे. और अगर सिर्फ बाप एक है मां अलग हैं, मसलन एक शख्स की दो बीवियां हैं, एक बीवी से बेटा है और दूसरी बीवी से बेटी है, तो ये दोनों भी आपस में बहन भाई हैं, तो बहन भाई हैं, लेकिन माएं इनकी अलग अलग हैं, बाप तो एक है लेकिन माएं अलग, तो इनको अल्लाती भाई बहन कहेंगे। और अगर मां एक है और बाप अलग है, मसलन एक औरत ने किसी शख्स से निकाह किया था, उससे औलाद हुई, फिर उसने तलाक दे दी और फिर इस औरत ने किसी और आदमी से निकाह कर लिया, इस आदमी से भी इस औरत की औलाद हुई, तो ये जो औलाद है औरत की, इनकी मां तो एक ही है लेकिन बाप अलग अलग हैं, तो इनको क्या कहेंगे? अखियाफी भाई बहन। तो बहनें तीन किस्म की हो सकती हैं, हकीकी बहनें भी, अल्लाती बहनें भी और अखियाफी बहनें भी। तो कुरान में क्या आया कि तुम्हारी बहनें तुम पर हराम हैं, और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि ये इसम की जिहत आम है, इसम की जिहत यानी ये बहन की जिहत आम है, ये सब पर बोला जाता है, चाहे हकीकी बहन हो उसको भी बहन कहते हैं, अल्लाती बहन हो उसको भी बहन कहते हैं, अखियाफी बहन हो उसको भी बहन कहते हैं। तो इसम की जिहत आम है, यानी तीनों किस्म की बहनों को शामिल है। इसी तरह कुरान में आगे अल्लाह फरमाते हैं, वह अम्मातुकुम व खालातुकुम, और तुम्हारी फूफियां और खालाएं भी तुम पर हराम हैं। तो फूफियां और खालाएं ये भी तीन किस्म की हो सकती हैं। फूफी कहते हैं बाप की बहन को, बाप की बहन जो है वह उसकी हकीकी बहन भी हो सकती है, अल्लाती बहन भी हो सकती है और अखियाफी बहन भी हो सकती है, लेकिन अम्मा का जो इसम है अम्मतुन, ये इसम की जिहत आम है, बाप की जो बहन है चाहे वो हकीकी बहन हो, अल्लाती बहन हो या अखियाफी बहन हो, ये अम्मतुन का लफ्ज सब पर बोला जाता है, हर एक को अम्मा कहते हैं यानी फूफी कहते हैं। तो अम्मतुन का जो इसम है इसकी जिहत आम है, यानी ये सब पर बोला जाता है। इसी तरह खाला कहते हैं मां की बहन को, और मां की बहन भी तीन तरह की हो सकती है, हकीकी भी हो सकती है, अल्लाती भी और अखियाफी। तो जब कहा कि तुम्हारी खालाएं तुम पर हराम हैं, तो तीनों किस्म की खालाएं इसमें दाखिल हो गई। तो कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वह अम्मातुकुम व खालातुकुम, और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं भी तुम पर हराम हैं। और मैंने बताया कि अम्मा और खाला ये इसम आम हैं, ये हर किस्म की अम्मा और हर किस्म की खाला को शामिल है, तो तीनों किस्म की हराम हो गई। आगे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, और भाई की बेटियां यानी भतीजियां, व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटियां यानी भांजियां। याद रखो भतीजियां और भांजियां भी इंसान पर हराम हैं। वजह यह कि भाई बहनों की औलाद अपनी औलाद की तरह होती है, और जैसे अपनी औलाद इंसान पर हराम है तो भाई बहनों की औलाद भी उस पर हराम है, उस वहां निकाह की कोई सूरत नहीं। और भाई बहन मैंने बतला दिया कि भाई बहन हकीकी भी हो सकते हैं, अल्लाती भी और अखियाफी भी। तो जो भी भाई हो, चाहे हकीकी हो, अल्लाती हो या अखियाफी, उसकी बेटियां इंसान पर हराम। इसी तरह जो भी बहन हो, चाहे हकीकी हो, अल्लाती हो या अखियाफी हो, उसकी बेटियां इंसान पर हराम हैं भाई। और फिर आगे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वो उम्महातुकुमुल्लाती अर्ज़ानकुम, और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, वो भी तुम पर हराम है। याद रखो रिजायत की वजह से भी वो सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम है। जैसे हकीकी मां इंसान पर हराम, इसी तरह रिजाई मां भी इंसान पर हराम। जैसे हकीकी बहन इंसान पर हराम, इसी तरह रिजाई बहन भी इंसान पर हराम। तो याद रखो मुद्दत रिजायत के अंदर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पी ले तो वो औरत उसकी रिजाई मां बन जाती है। और मुद्दत रिजायत जो है, मुद्दत रिजायत याद रखो साहिबैन के नजदीक मुद्दत रजाअत 2 साल है, और जबकि इमाम साहब के नजदीक मुद्दत रजाअत 2.5 साल है। तो ये जो मुद्दत रजाअत है यानी 2.5 साल, जो बच्चा भी 2.5 साल की उम्र के अंदर अंदर किसी औरत का दूध पी लेगा तो वो औरत उसकी रिजाई मां बन जाएगी। तो कहते हैं वह उम्महातुकुमुल्लाती अर्ज़ानकुम, और तुम्हारी वो माए जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया वो भी तुम पर हराम है। वह अखवातुकुम मिनर रजाअती, और इसी तरह रिजाई बहने जो हैं वो भी इंसान पर हराम है भाई। आगे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएं यानी जो तुम्हारी सास है वो भी तुम पर हराम है। याद रखो, कोई शख्स किसी औरत से जैसे ही निकाह करता है तो उस औरत की मां यानी जो उस शख्स की सास है वो हमेशा हमेशा के लिए इस शख्स पर हराम हो गई। तवज्जो है, हराम हो गई। और इसी तरह रबीबा भाई, रबीबा कहते हैं बीवी की बेटी यानी सोतेली बेटी। एक औरत है उसकी पहले खावन से बेटी है और फिर पहले खावन का इंतकाल हुआ और इसने किसी दूसरे शख्स से निकाह कर लिया और पहले खावन से इसकी बेटी है, तो ये जो बेटी है ये इस नए खावन के लिए रबीबा कहलाएगी। ये इसकी क्या है? रबीबा यानी सोतेली बेटी है। और सोतेली बेटी जो है वो भी इंसान पर हराम हो जाती है जब वो इस सोतेली बेटी की मां के साथ सोहबत कर ले। जब खावंद अपनी इस नई बीवी के साथ सोहबत कर लेगा तो इस बीवी की पहले खावंद से बेटी है वो इस खावंद पर हमेशा के लिए हराम हो गई। और जब तक सोहबत नहीं की तब तक वो बेटी हलाल है, यानी इस औरत को तलाक देकर बेटी से निकाह करना चाहता है और सोहबत अभी नहीं की तो इस रबीबा से निकाह कर सकता है। फिर क्या कर सकता है इस रबीबा से? तो याद रखना भाई, एक है बीवी की मां और एक है बीवी की बेटी यानी रबीबा। बीवी की मां निकाह करते ही हमेशा के लिए हराम हो जाती है, जबकि बीवी की बेटी यानी रबीबा वो तब हराम होगी जब इस बीवी से इंसान सोहबत कर लेगा। निकाह करते ही सास हराम हो जाएगी। एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और निकाह के बाद अभी रुख्सती नहीं हुई, वो इस औरत को तलाक देकर इसकी मां के साथ निकाह करना चाहता है। नहीं भाई, जैसे ही आपने इस औरत से निकाह किया था इसकी मां आप पर अबदुल आबाद के लिए हराम हो चुकी, अब वहां निकाह की कोई सूरत नहीं। बात समझ में आ गई? दूसरी सूरत, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और उस औरत की पहले खामन से एक बेटी है। अब वो शख्स इस औरत को छोड़कर इसकी बेटी से निकाह करना चाहता है, तो याद रखो ये इस शख्स ने अगर अपनी इस बीवी से अभी तक सोहबत नहीं की तो फिर बेटी से निकाह जायज है। इस औरत को छोड़ दे और क्या कर ले? इसकी बेटी से निकाह कर ले। लेकिन अगर ये शख्स इस बीवी से सोहबत कर चुका है तो इस बीवी की जो बेटी है पहले खावन से वो इस शख्स पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो चुकी। तो ये कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएं यानी तुम्हारी बीवियों की माएं भी तुम पर हराम है। और इसमें देखो कोई कैद नहीं है कि उस बीवी से आप सोहबत कर चुके हो या आपने सोहबत नहीं की, बस बीवी की मां है तो वो आप पर हमेशा के लिए हराम है। आगे देखिए कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह रबाइबुकुम उल्लाती फी हुजूरिकुम। मैंने बतलाया रबाइब जमा है रबीबा की, और रबीबा किसे कहते हैं? बीवी की जो पहले खावन से बेटी है वो इस नए खावन के लिए रबीबा है यानी सोतेली बेटी है। तो वह रबाइबुकुम उल्लाती फी हुजूरिकुम, और तुम्हारी वो रबीबाएं जो तुम्हारी परवरिश में है, जो तुम्हारे परवरिश में है। और वो रबीबाएं मिन निसाइकुम, तुम्हारी उन बीवियों से हैं अल्लाती दखल तुम बिहिन्ना, जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। वो रबीबाएं जो तुम्हारी परवरिश में हैं, और ये रबीबाएं तुम्हारी उन बीवियों से हैं यानी उन बीवियों की बेटियां हैं जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। तो इस तरह की जो रबीबाएं हैं वो भी इंसान पर हमेशा के लिए हराम है। तो देखो यहां दो कैदें जिक्र हैं कुरान के अंदर भाई। एक तो कैद क्या? अल्लाती फी हुजूरिकुम, वो रबीबाएं तुम्हारी परवरिश में हो। और दूसरी कैद है मिन निसाइकुम, तुम्हारी उन बीवियों से हो ये रबीबाएं अल्लाती दखल तुम बिहिन्ना, जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। तो दो कैदें जिक्र हुई रबीबा के साथ, तुम्हारी वो रबीबाएं जो तुम्हारी परवरिश में है और तुम्हारी उन बीवियों की बेटियां हैं जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। याद रखो इंदल अहनाफ ये फी हुजूरिकुम की कैद ये कैद इत्तेफाकी है, और अल्लाती दखल तुम बिहिन्ना के उन बीवियों से हो जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो ये कैद इख्तेराजी है। याद रखो एक कैद इत्तेफाकी होती है और एक कैद इख्तेराजी। कैद इख्तेराजी वो है जिसके जरिए किसी चीज से इख्तराज मकसूद हो, किसी को निकालना मकसूद हो। तो यहां क्या जिक्र हुआ? तुम्हारी उन बीवियों से हैं जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। मालूम हुआ अगर वो रबीबाएं उन बीवियों से हैं जिनसे अभी तक आपने सोहबत नहीं की तो वो आपके लिए हलाल है। ये कैद इख्तेराजी है। कैद इख्तेराजी किसे कहते हैं? इख्तराज का क्या माना है? किसी चीज से बचना, तो यहां पर भी ये कैद लगाकर कौन सी बीवियों को निकाल दिया गया जिनसे अभी सोहबत नहीं की, तो मालूम हुआ यह सोहबत की कैद इहतिराजी है। और परवरिश में होने की जो कैद है वह इंदल अहनाफ वो इत्तेफाकी है, यानी आदतन अमूमन ऐसा होता है कि जो रबीबा होती है वो उसको मां अपने साथ रखती है तो उसी नए खावंद की परवरिश में होती है। याद रखो बेटी जो है उसका मां बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, हर वक्त उसको अपने साथ रखती है, उसकी हिफाजत करती है मां। तो उमूमन आदतन ऐसा होता है कि अगर पहले खावन से औरत की कोई बेटी है तो दूसरी जगह भी मां जब निकाह करेगी तो बेटी को अपने साथ ही रखेगी उसकी हिफाजत के लिए। बात समझ में आ गई? तो आदतन रबीबा जो है उस नए खावंद की परवरिश में होती है। तो ये जो कैद जिक्र है कि वो रबीबाएं तुम्हारी परवरिश में हो, ये कैद इहतिराजी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो तुम्हारी परवरिश में ना हो उनसे तुम निकाह कर सकते हो, नहीं नहीं, ये कैद इत्तेफाकी है। यानी वाकई में ऐसा होता है, आदत में अमूमन ऐसा होता है कि रबीबा अमूमन उस नए अपने सोतेले बाप की परवरिश में होती है। बात समझ में आ गई? तो इंदल अहनाफ यहां दो कैदे हैं, फी हुजूरिकुम ये कैद इत्तेफाकी है, यानी आदतन चूंकि ऐसा होता है इसलिए यह कैद साफ जिक्र कर दी गई कुरान में। और दूसरी कैद सोहबत वाली लगाई गई कि उन बीवियों से तुम सोहबत कर चुके हो, तो पहली कैद इत्तेफाकी है और यह दूसरी कैद इहतिराजी है। इस पर इश्काल होता है कि ए अहनाफ, दो कैदें कुरान में जिक्र हैं और आपने एक कैद को इत्तेफाकी करार दिया और दूसरी को इहतिराजी करार दिया, तो जवाब यह कि भाई कुरान से खुद पता चल रहा है कि पहली कैद इत्तेफाकी है और दूसरी कैद इहतिराजी है। चुनांचे आगे अल्लाह फरमाते हैं फइल्लम तकूनू दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने अपनी इन बीवियों से सोहबत नहीं की, ये बीवियां जिनसे रबीबाएं हैं जिनसे सोतेली बेटियां हैं इनसे अगर तुमने सोहबत नहीं की, फला जुनाह अलैकुम, फिर तुम पर कोई हरज नहीं है, यानी फिर तुम इस रबीबा से निकाह कर सकते हो। अगर इस बीवी से तुमने अभी तक सोहबत नहीं की तो वह रबीबा तुम्हारे लिए हलाल है। तो देखो कुरान से पता चल रहा है कि जो सोहबत की कैद लगाई गई थी ये इहतिराजी कैद थी, चुनांचे आगे खुद अल्लाह फरमा रहे कि अगर सोहबत नहीं की तो रबीबा तुम्हारे लिए हलाल है। अगर पहली कैद भी इहतिराजी होती तो फिर दोनों की यहां नफी होती कि वो रबीबाएं तुम्हारी परवरिश में भी ना हो और रबीबा की मां यानी अपनी उस बीबी से तुम सोहबत भी तुमने न की हो तो फिर तुम्हारे लिए वो हलाल हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ सोहबत की नफी पर रबीबा को हलाल करार दिया जा रहा है, अगर ये दोनों कैदें एहतराजी होती तो फिर दोनों की नफी पर हलाल करार दिया जाता, ये कि उन बीवियों से तुमने सोहबत भी ना की हो और वो रबीबाएं तुम्हारी परवरिश में भी ना हो, फिर वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। लेकिन कुरान में सिर्फ सोहबत की नफी पर रबीबा को हलाल करार दिया गया, मालूम हुआ सोहबत की जो कैद थी वो इहतिराजी थी और फी हुजूरिकुम की जो कैद थी वो इहतिराजी नहीं, वो कैद इत्तेफाकी है। भाई बात समझ में आ गई? और नीज आगे फिर कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वहलाइलु अबनाइकुमुल्लदीन मिन अस्लाबिकुम, हलाइल जमा है हलीला की, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां अल्लदीन मिन अस्लाबिकुम जो तुम्हारी पुश्त से हैं, यानी जो तुम्हारे हकीकी बेटे हैं उनकी जो बीवियां हैं वो भी तुम पर हराम हैं। और इसी तरह याद रखो जो भी मुजक्कर फुरू होंगे उनकी बीवियां इंसान पर हराम हैं, जो भी मुजक्कर फुरू हैं इंसान के उनकी बीवियां इंसान पर हराम, बेटे की बीवी भी हराम, पोते की बीवी भी हराम, पड़पोते की बीवी भी हराम, इसी तरह बेटी से नीचे चले जाए नवासा, ये नवासा नवासे की बीवी भी इंसान पर हराम, पड़ नवासा उसकी बीवी भी इंसान पर हराम। तो पुरुष से इंसान के जो भी मुजक्कर फुरू हैं उनकी बीवियां इंसान पर हराम हैं। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वह अंतजमाऊ बैन अल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ, और यह भी तुम पर हराम है कि तुम दो बहनों को जमा करो मगर यह कि जो पहले गुजर चुका, यानी अब तक जो हो चुका वो तो मुआफ है लेकिन अब आगे इसकी इजाजत नहीं, अब दो बहनों को एक निकाह में जमा करना हराम है। भाई बात समझ में आ गई? और फिर उसके बाद साहिब कुदूरी ने आपको यह भी बतलाया था कि इंसान पर अपने बाप की बीवियां और अपने अजदाद की बीवियां भी हराम हैं। बाप की एक बीवी तो है, वो इस शख्स की हकीकी मां है, और मां की हुर्मत तो पहले ही जिक्र हो चुकी। कुरान में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया था, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम। तो हकीकी मां और जद्दाद की हुर्मत का तो यहीं से पता चल गया था। लेकिन अगर बाप ने और भी निकाह किए हुए हैं, या इसी तरह ऊपर जो अजदाद हैं यानी दादा नाना वगैरह, उन्होंने और भी निकाह किए हुए हैं, तो याद रखो ये भी इसके उसूल की बीवियां हैं, ये सब उस शख्स पर हराम है, ये सब उस शख्स पर हराम है। और दलील जिक्र की थी साहिब हिदाया ने कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा, कि तुम लोग निकाह न करो उन औरतों से जिनसे तुम्हारे आबा ने निकाह किए हैं, तुम्हारे उसूल ने निकाह किए हैं। मैंने बतलाया था कि आबा का यहां तर्जमा कर लेंगे उसूल, उसूल। तो जब उसूल का इसका माना किया तो इसके अंदर बाप भी दाखिल हुआ और दादा नाना वगैरह सब ऊपर तक दाखिल हो गए। इन सब की बीवियां जो हैं वो इंसान पर हराम हैं। और मैंने बताया था ये उमूम मजाज है भाई, आबा का क्या तर्जमा हमने किया, उसूल उसूल उसूल। उमूम मजाज इसको कहते हैं भाई, आप जानते हैं एक लफ्ज का हकीकी माना होता है और एक मजाजी माना होता है। एक वक्त में एक माना का इरादा किया जा सकता है, दोनों मानी का नहीं। या आप हकीकी माना का इरादा करेंगे या मजाजी माना का इरादा करेंगे। लेकिन मसलन एक मकाम ऐसा है कि वहां वहां हम दोनों को उसमें दाखिल करना चाहते हैं, तो इंदल अहनाफ ये जमा बैन अल हकीकती वल मजाज जायज नहीं। हां एक तरीका है कि उमूम मजाज के जरिए आप दोनों को दाखिल कर दें। उमूम मजाज इसको कहते हैं लफ्ज का कोई मजाजी माना कर लें। कौन सा माना कर लें भाई, एक वक्त में एक माना हो सकता है या हकीकी या मजाजी। हम मजाजी माना कर लेते हैं, लेकिन वो मजाजी माना ऐसा होता है कि हकीकी माना भी उसके अंदर दाखिल हो जाता है, हकीकी माना भी उसके अंदर दाखिल हो जाता है। मसलन देखो शेर का हकीकी माना क्या, जंगली दरिंदा, और शेर का मजाजी माना क्या, बहादुर आदमी। तो अब एक वक्त में एक माना हो सकता है इसका, या तो हकीकी माना होगा या मजाजी माना। लेकिन उमूम मजाज यह है कि आप ऐसा मजाजी माना कर लें कि जिसमें हकीकी माना भी दाखिल हो जाए भाई। मसलन मैं आपको कहता हूं कल मैंने एक शेर देखा था और शेर का माना मैं करता हूं बहादुर हैवान के, क्या माना करता हूं बहादुर हैवान। अब देखो ये बहादुर हैवान ये शेर का हकीकी माना नहीं है, क्योंकि शेर का हकीकी माना तो क्या है, जंगली दरिंदा है। तो मैंने शेर के लफ्ज का मजाजी माना किया, लेकिन ऐसा मजाजी माना किया कि हकीकी माना भी इसके अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि जंगली दरिंदा वो भी क्या है, एक बहादुर हैवान है। बहादुर आदमी भी क्या है, बहादुर हैवान, और जंगली दरिंदा भी क्या है, बहादुर हैवान। तो अब इसके अंदर दोनों दाखिल हो गए। कल मैंने एक शेर देखा था, क्या माना, एक बहादुर हैवान देखा था, अब बहादुर आदमी भी इसके अंदर आ गया और वो जंगली दरिंदा भी इसके अंदर दाखिल हो गया। इसको क्या कहते हैं, उमूम मजाज, यानी ऐसा मजाजी माना कर लो जो आम है, जिसमें उमूम है, हकीकी माना भी उसी के अंदर आ गया भाई। बात समझ में आ गई। तो यहां आबा, अब का हकीकी माना क्या, बाप, और मजाजी माना क्या, दादा नाना वगैरह। लेकिन हमने अब का क्या माना कर लिया, असल के, और असल ये आम है, इसके अंदर दादा नाना भी दाखिल और बाप वो भी असल है, वो भी इसके अंदर दाखिल हो गया। तो ये क्या है, उमूम मजाज। और उसके बाद साहिब कुदूरी ने आपको ये भी बतलाया था कि किसी शख्स पर उसके बेटे की बीवी भी हराम और उसके औलाद के जो बेटे हैं उनकी बीवियां भी इंसान पर हराम हैं। और दलील जिक्र की थी कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वहलाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां अल्लदीन मिन अस्लाबिकुम, के वो बेटे तुम्हारी पुश्त से हैं, यानी हकीकी बेटे हैं, तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम हैं। मैंने बतलाया था कि यहां पर भी अबना का तर्जमा किसके कर लें, फुरूअ के, ये हमने मजाजी माना कर लिया। अब सिर्फ बेटों की बीवियां नहीं हराम, बल्कि बेटे या नीचे जो भी मुजक्कर फुरूअ हैं उनकी बीवियां इंसान पर हराम हो गईं। पोते की बीवी भी हराम, पड़पोते की बीवी भी हराम, नवासे की बीवी भी हराम और पड़ नवासे की बीवी भी हराम, क्योंकि ये सब इंसान की फुरू हैं और उसकी पुश्त से हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर कैद आई थी कि तुम्हारी वो औलाद जो तुम्हारी पुश्त से हो। तो साहिब हिदायत ने बतलाया था कि ये जो मिन असलाबिकुम की कैद आई, ये रिजाई बेटे को निकालने के लिए नहीं है। रिजाई बेटे की बीवी भी हराम है, जिस तरह हकीकी बेटे की बीवी हराम है। तो ये फिर कैद किस लिए लगाई गई? उन्होंने बतलाया कि ये मुतबन्ना को निकालने के लिए ये कैद है, यानी मुंह बोला बेटा। बाज लोग किसी शख्स को अपना मुंह बोला बेटा बना लेते हैं भाई, तो ये जो मुंह बोला बेटा है ये हकीकी बेटे की तरह नहीं है भाई, ये इनके कहने से इनका बेटा नहीं बन गया, लिहाजा ये बेटा किसी औरत से निकाह करता है और फिर उसको छोड़ देता है। अब इसका मुंह बोला बाप जो है वो इस औरत से निकाह करना चाहता है तो बिल्कुल निकाह कर सकता है भाई, क्योंकि ये कोई उसके हकीकी बेटे की बीवी नहीं है भाई। इसी तरह बतलाया कि बेटे की बीवी भी हराम और नीचे औलाद में जो भी बेटे हैं, चाहे यानी बेटे की तरफ से चाहे बेटी की तरफ से जो भी मुजक्कर फुरू हैं उनकी बीवियां भी हराम हैं। और दलील क्या जिक्र की? वहलाइलु अबनाइकुम, तुम्हारे बेटों की बीवियां। और मैंने क्या कहा था, अबना का क्या तर्जमा कर लें? फुरू। तुम्हारे फुरू की बीवियां, वो फुरू जो तुम्हारी पुश्त से हैं, यानी जिनसे तुम्हारा नस्बी रिश्ता है, जिनसे तुम्हारा नस्बी रिश्ता है, तो उनकी बीवियां भी इंसान पर हराम हैं। तो या तो यूं कहें कि ये जो फुरू की बीवियां हैं वो भी हराम हैं, इस आयत से ही साबित हो रहा है उमूम मजाज के तरीके पर। किस तरीके पर? कि अबना का क्या तर्जमा हमने कर लिया, फुरू के कर लिया। तो उमूम मजाज के तरीके पर ये सब बीवियां इंसान पर हराम। या यूं कहो कि इनकी बीवियां जो फुरू की बीवियां हैं नीचे तक, इनकी हुरमत इजमा के जरिए साबित है। बेटे की बीवी की हुरमत ये नस से यानी कुरान से साबित है, और बाकी जो फुरू हैं मुजक्कर नीचे, पोता पड़पोता वगैरह और इसी तरह नवासा और पड़नवासा वगैरह, उनकी बीवियों की जो हुरमत है वो इजमा से साबित है। बात समझ में आ गई? हासिल कलाम क्या हुआ कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएं हराम हैं। तो इस उम्महात से माओ की भी हुर्मत साबित हो गई और जद्दाद की हुर्मत भी साबित हो गई, क्योंकि मां असल को कहते हैं और जद्दाद भी इंसान के लिए असल हैं, तो उम्महात का लफ्ज इन सब को शामिल है। बात समझ में आ गई? या आप यूं भी कह सकते हैं, साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि उम्महात की हुर्मत तो आयत से साबित हुई और जद्दाद की हुर्मत जो है वो इजमा के जरिए साबित हुई। इसी तरह आगे बतलाया था कि इंसान पर अपने बाप की बीवी भी हराम है, हकीकी मां के अलावा और बीवी, और इसी तरह अपने अजदाद की जो बीवियां हैं इंसान पर वो भी हराम है, यानी नानी दादी के अलावा अगर नाना या दादा की और बीवियां हैं तो वो भी इंसान पर हराम है। और ये सब किताबुल्लाह से साबित हैं। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम, कि तुम निकाह न करो उन औरतों से जिनसे तुम्हारे आबा ने निकाह किया है। तो ये आबा बाप भी इसके अंदर दाखिल और नाना दादा वगैरह भी दाखिल, तो सब की बीवियों की हुर्मत इस आयत से साबित हो गई, यानी उमूम मजाज के तरीके पर। और या आप यूं भी कह सकते हैं, मैंने आपको बतलाया कि आयत से सिर्फ बाप की बीवी की हुर्मत साबित हो रही है, दादा या नाना वगैरह की जो और बीवियां हैं उनकी हुर्मत किताबुल्लाह से नहीं साबित बल्कि इजमा से साबित है, आप यूं भी कह सकते हैं। इसी तरह साहिब कुदूरी ने आपको बतलाया कि अपने बेटे की बीवी भी इंसान पर हराम और इसी तरह अपने औलाद के जो बेटे हैं उनकी बीवियां भी इंसान पर हराम, यानी पोता पड़पोता नवासा पड़ नवासा वगैरह, इनकी बीवियां भी क्या है, इंसान पर हराम। और दलील साहिब हिदाया ने जिक्र की, वहलाइलु अबनाइकुमुल्लदीन मिन असलाबिकुम, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां कि वो बेटे तुम्हारी पुश्त से हैं, यानी तुम्हारे जो हकीकी बेटे हैं उनकी बीवियां भी तुम पर हराम हैं। तो यहां पर मैंने आपको बतलाया कि या तो अबनाइकुम किस माना में कर लो, फुरु के माना में कर लो, तुम्हारे फुरु की बीवियां, और फुरु के अंदर सब आ गए, बेटा भी आ गया, पोता भी, पड़पोता भी, नवासा भी, पड़नवासा भी, नीचे तक सब इसके अंदर आ गए। तो उमूम मजाज के तरीके पर बेटे की बीवी की हुरमत भी आयत से पता चल गई और नीचे वालों की बीवियों की हुरमत भी आयत से ही पता चल गई। या आप यह भी कह सकते हैं कि आयत से सिर्फ बेटे की बीवी की हुरमत का पता चला है, बाकी नीचे वाली जो फुरु हैं उनकी बीवियों की हुरमत, उनके हुरमत की दलील इजमा है, यानी इस पर तमाम फुकहा का इजमा है। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वला बि उम्मिही मिनर रजाअति वला बि उख्तिही मिनर रजाअति लिकौलिही तआला व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम व अखवातुकुम मिनर रजाअ ولقوله عليه السلام يحرم من الرزاع ما يحرم من النسب ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا بملك يمين وطأ। आगे साहिब खुदूरी फरमा रहे हैं, वला बि उम्मिही मिनर रजाअति वला बि उख्तिही मिनर रजाअति, और आदमी के लिए हलाल नहीं है कि वो निकाह करे अपनी रजाई मां के साथ, वला बि उख्तिही मिनर रजाअति, और ना ही अपनी रजाई बहन के साथ। रजाई मां भी हराम और रजाई बहन भी हराम। मैंने आपको बतलाया था कि रजाअत इसे कहते हैं कि मुद्दत रजाअत के अंदर कोई बच्चा जो है किसी औरत का दूध पी ले, और मुद्दत रजाअत साहिबैन के नजदीक 2 साल है, जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्ला फरमाते हैं कि मुद्दत रजाअत जो है वो 2.5 साल है, और अक्सर अहनाफ इस पर फतवा देते हैं। तो 2.5 साल की मुद्दत के अंदर जिस बच्चे ने किसी औरत का दूध पी लिया तो वो औरत उसकी रजाई मां बन गई, और जैसे हकीकी मां इंसान पर हराम, इसी तरह रजाई मां भी इंसान पर हराम, जैसे हकीकी बहन इंसान पर हराम, इसी तरह रजाई बहन भी इंसान पर हराम। तो बच्चे ने जिस औरत का दूध पी लिया मुद्दत रजाअत में, वो उसकी रजाई मां बन गई, और उस औरत का खावन जो है वो इस बच्चे का रजाई बाप बन गया, और इस औरत की जो औलाद है वो इस बच्चे के रजाई भाई बहन बन गए। भाई तो कहते हैं वला बि उम्मिही मिनर रजाअति वला बि उख्तिही मिनर रजाअति, और जायज नहीं है कि कोई शख्स निकाह करे अपनी रजाई मां से और ना अपनी रजाई बहन से, लिकौलिही तआला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से। अब दलील जिक्र कर रहे हैं कि ये क्यों हराम है इंसान पर। कहते हैं वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं और तुम्हारी वो माए अल्लाती अरज़ानकुम जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, वह अखवातुकुम मिनर रजाअति और तुम्हारी वो बहने जो रजाअत से हैं, यानी तुम्हारी रजाई बहने, वो भी तुम पर हराम हैं। और नीज वली कौलिही अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, आपने फरमाया यहरुमु मिनर रजाअ मा यहरुमु मिनन नसब, के हराम हो जाते हैं रजाअत की वजह से मां वो रिश्ते वो औरतें, यहरुमु मिनन नसब, जो नसब की वजह से हराम होती हैं। जो औरतें नसब की वजह से हराम हो जाती हैं वो रजाअत की वजह से भी हराम हो जाती हैं। भाई अब इसमें याद रखिए, ये जो दूध पिलाने वाली औरत है ये है मुर्जिया, ये क्या है मुर्जिया, दूध पिलाने वाली, और जिस बच्चे ने दूध पिया है वो है रजिया, भाई रजिया दूध पीने वाला बच्चा। तो याद रखो मुर्जिया की तरफ से सब जो हैं वो रजिया के रिश्तेदार बन जाते हैं, दूध पिलाने वाली की तरफ से सब रिश्तेदार बन जाते हैं, किसके रजिया के, यानी वो जो दूध पिलाने वाली है वो मां बन गई, उसका खावन जो है वो इसका रजाई बाप बन गया, उस औरत की जो औलाद है वो इसके रजाई भाई बहन बन गए, और जो इन रजाई मां बाप के उसूल हैं वो इस बच्चे के रजाई उसूल बन गए, और जैसे हकीकी उसूल जो है नसबी उसूल इंसान पर हराम होते हैं, ये रजाई उसूल भी क्या हो गए बच्चे पर हराम हो गए। तो ये बयान करने के लिए कि रजाअत की वजह से कौन कौन से रिश्ते जो हैं हराम होते हैं, तो उलमा ने इस जाब्ते को एक शेर में जिक्र किया है। भाई ये शेर आप लिख लें, यह आपको काम आएगा हर जगह। भाई लिखिए भाई, अज जानिब शीरदह, अज जानिब शीर शीन या रा, शीर दह दाल और गोल हा है। अस जानी बे शीर दह हमा हा मीम हा भाई हा हिम्मत वाली हा है भाई हिम हा छोटी हा हा मीम हा ख्वेश खा वो या शीन ये वो बहुत मामूली सा पढ़ते हैं ख्वेश भाई क्या लिखा अस जानी बे शीर दह हमा ख्वेश शावंद शीन वो नून दाल अस जानी बे शीर दह हमा ख्वेश शावंद अगला मिसरा है व अस जानी बे शीर खार व अस जानी बे शीर खार शीर शीन या रा और खार खा वो अलिफरा खा वो अलिफरा ये वो भी मामूली सा पढ़ते हैं भाई व अस जानी बे शीर खार जो जानो फुरु जो जान जो जान व फुरु व फुरु लिख लिया भाई देखिए फिर इस पूरे शेर को देख लीजिए अस जानी बेशीर दह हमा खेश शबंद व अस जानी बेशीर खार जौजान व फुरु भाई इसमें पूरा जाप्ता जिक्र हो गया कि कौन कौन रिश्तेदार बनेंगे देखिए अस जानी बेशीर दह शीर फारसी जुबान में दूध को कहते हैं शीर दह वो जो दूध पिलाने वाली है भाई हमा का माना है सब खेश का माना है रिश्तेदार अस जानिब शीरदह दूध पिलाने वाली की जानिब से हम खेशवन सारे रिश्तेदार बन जाते हैं वह अस जानिब शीर खार और दूध पीने वाले की जानिब से जौजान फुरु मियां बीवी जौजान जौज की तस्निया है जौजान मियां बीवी व फुरु और उनकी औलाद जौजान तस्निया है जौज की मियां बीवी व फुरु और उनकी औलाद भाई देखो अस जानिब शीर द हम खेशवन व अस जानिब शीर खार जौजानो फुरु अस जानिब शीर द दूध पिलाने वाली की तरफ से हम खेशवन सब रिश्तेदार हो जाते हैं व अस जानिब शीर खार और दूध पीने वाले की तरफ से जौजानो फुरु मियां बीवी और उनकी जो औलाद है उनकी जो औलाद है याद रखो दूध पिलाने वाली जो मुर्जिया है उसकी तरफ से सब रिश्तेदार बन गए ये बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया ये इसकी रिजाई मां बन गई इस औरत का जो खावंद है वो बच्चे का रिजाई बाप बन गया और ये जो रिजाई मां बाप के जो उसूल हैं वो बच्चे के दादा दादी और नाना नानी बन गए रिजाई तौर पर और ये जो दूध पिलाने वाली मुर्जिया है इनके जो फुरुआ हैं यानी इनकी जो औलाद है वो इस रजिया के भाई बहन बन गए जी जी। वो इसके रिजाई भाई बहन बन गए तो मुर्जिया की तरफ से सब रिश्तेदार बन गए इस बच्चे के जबकि रजिया जो दूध पीने वाला है उसकी तरफ से सिर्फ मियां बीवी और उनकी औलाद हराम होते हैं मसलन दूध पीने वाला या बच्चा होगा या बच्ची अगर वो बच्चा है तो बड़ा होकर ये जिस औरत से निकाह करेगा वो इस रिजाई मां बाप की बहू बन गई और जैसे हकीकी बहू इंसान पर हराम होती है इसी तरह ये रिजाई बहू भी क्या है इन पर हराम है और अगर ये दूध पीने वाली बच्ची हुई तो आगे चलकर बड़ी होगी और ये जिस आदमी से निकाह करेगी वो इनका रिजाई दामाद बन गया क्या बन गया रिजाई दामाद बन गया और जैसे हकीकी दामाद पर सास हराम होती है इसी तरह रिजाई बेटी का जो खावंद है उस पर भी ये रिजाई सास हमेशा हमेशा के लिए हराम है बात समझ में आ गई तो मालूम हुआ दूध पीने वाले की तरफ से रिश्तेदार कौन बने जौजान मियां बीवी दूध पीने वाला बच्चा है तो वो रिजाई बेटा बन गया और उसकी जो बीवी होगी वो बहू बन गई भाई वो क्या बन गई बहू और अगर वो दूध पीने वाली लड़की थी तो उसका जो खावंद है वो दामाद बन गया जैसे हकीकी बेटी का खावंद दामाद होता है रिजाई बेटी का खावंद भी दामाद है तो दूध पीने वाले की तरफ से ये मियां बीवी जो हैं ये उन पर हराम हैं और नीस आगे इनकी औलाद ये जो रिजाई बेटा या रिजाई बेटी है इसकी जो औलाद है वो भी अपने रिजाई मां बाप पर हराम है। जैसे हकीकी बेटे या बेटी की औलाद इंसान पर हराम होती है, इसी तरह रिजाई बेटे या बेटी की जो औलाद आगे होगी वो भी इस रिजाई मां बाप पर हराम है। बात समझ में आ गई, जाब्ता समझ में आ गया। मुर्जिया की तरफ से सब रिश्तेदार बन जाते हैं और रजी दूध पीने वाले की तरफ से सिर्फ मियां बीवी और उनकी जो औलाद है। भाई आगे देखिए, वला यजमाउ बैन उख्तैन निकाहं वला बिमिल्कि यमीन वतआ। भाई याद रखो, ये जायज नहीं है कि कोई शख्स दो बहनों को अपने निकाह में जमा करे। मसलन एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है, यह औरत उसकी बीवी है, और अब इस शख्स का इरादा बना कि अपनी बीवी की बहन से भी निकाह कर ले, तो शरीयत ने मना किया है कि जब तक यह औरत तुम्हारी बीवी है तुम इसकी बहन से निकाह नहीं कर सकते, वरना तो क्या खराबी लाजिम आएगी, जमा बैनल उख्तैन लाजिम आएगा, दो बहनों को जमा करना लाजिम आएगा। कोई शख्स दो बहनों को अपनी निकाह में जमा करे ये जायज नहीं है। भाई कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह अंतजमाऊ बैनल उख्तैनी कि तुम पर हराम करार दिया गया है कि तुम दो बहनों को जमा करो। वजह यह कि बहनों के दरमियान बड़ी मोहब्बत होती है भाई, लेकिन जब एक शख्स दो बहनों से निकाह करेगा तो वो दोनों एक दूसरे की सौकने बन जाएंगी और सौकनों के दरमियान तब अन नफरत हुआ करती है। तो देखो ये दो बहनों का निकाह में जमा करना ये इस बात की तरफ ले गया कि उन बहनों के दरमियान कतई ताल्लुक आ जाएगा, आपस में नफरत आ जाएगी, और इस्लाम तो सिला रहमी का हुक्म देता है कि रिश्तेदारों के साथ जोड़ कर रखो भाई, उनके साथ ताल्लुक बना कर रखो। लेकिन ये रिश्ता जो है दो बहनों को एक शख्स के अकद में जमा करना ये किस तरफ ले गया, कतई रहमी की तरफ ले गया। इस्लाम दर्श देता है सिला रहमी का के रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ कर रखो, और ये कतई ताल्लुक की तरफ ले गया, लिहाजा शरीयत ने इस पर पाबंदी लगा दी, शरीयत ने इससे रोक दिया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला यजमाउ बैन उख्तैन निकाहन, और जमा नहीं कर सकता कोई शख्स दो बहनों को निकाहन, निकाह के एतबार से कि वो दोनों बहनें उसके निकाह में जमा हो जाएं, वला बिमिल की यमीन, और कोई शख्स दो बहनों को जमा नहीं कर सकता बिमिल की यमीन, मिल के यमीन के जरिए कि दोनों बहनें उसकी बांदियां हों, वत अन बतबार वती के। याद रखो जैसे दो बहनों को एक शख्स निकाह में जमा नहीं कर सकता, इसी तरह दो बहनें किसी एक शख्स की ममलूका हैं तो वो इन दोनों से सोहबत नहीं कर सकता। जैसे दो बहनों को निकाह में जमा करना जायज नहीं, इसी तरह दो ऐसी बांदियां जो आपस में बहनें हैं उन दोनों को वती के एतबार से जमा करना भी जायज नहीं कि उनका आका और मालिक दोनों बहनों से वती करे, दोनों बहनों से सोहबत करे। आप जानते हैं आका के लिए अपनी बांदी से सोहबत जायज है, तो एक शख्स है उसकी मिल्कियत में दो बहनें हैं तो इन दो बहनों में से याद रखो वो एक से सोहबत कर सकता है, दोनों से सोहबत नहीं कर सकता भाई, वरना तो क्या लाजिम आएगा, दो बहनों का जमा करना बएतबार वती के, और ये हराम है। जैसे दो बहनों को निकाह के एतबार से जमा करना जायज नहीं, इसी तरह दो बहनों को वती और सोहबत के एतबार से जमा करना भी जायज नहीं है। तो देखिए कहते हैं वला यजमाउ बैन उख्तैन निकाहन, और जमा नहीं कर सकता कोई शख्स दो बहनों को निकाहन बैतबार निकाह के, वला भी मिल की यमीन वता, और न दो बहनों को जमा कर सकता है मिल के यमीन के जरिए कि वो उसकी ममलूका हो, तो मिल के यमीन के जरिए वत अन बैतबार वती के, किन दोनों से वती करे ये जायज नहीं। दलील क्या, दलील आगे जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदायत कौल ही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वह अंतजमाऊ बैनल उख्तैन, और ये कि तुम जमा करो दो बहनों को, यानी तुम पर हराम करार दिया गया है कि तुम दो बहनों को जमा करो। वलिकौलिही अलैहि सलाम, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की वजह से कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, और जो शख्स तुम में से ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, फला यजमअन्नमा अहू, तो हरगिज जमा न करे अपने पानी को, फी रहिमी उख्तैनी, दो बहनों के रहम में। दो बहनों के रहम, रहम और रहीम दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं। हा को साकिन भी पढ़ सकते हैं और हा के नीचे कसरा भी भाई। और रहम कहते हैं जिसमें बच्चे की पैदाइश होती है, परवरिश होती है, यानी बच्चा दानी भाई। और मा अहू फला यजमान न मा अहू, वो हरगिज जमा न करे अपने पानी को। मा से मुराद मादाए मनविया है जिससे बच्चे की पैदाइश होती है। तो हुजूर फरमाते हैं मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो शख्स तुम में से ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, फला यजमान न मा अहू फी रहमी उख्तैन, तो वो हरगिज जमा न करे अपने पानी को दो बहनों के रहम में। आगे देखिए फइन तज़व्वज़ उख्ता अमतिन लहू कद वतिअहा सहन निकाह लिसुदूरिही मिन अहलिही मुज़ाफ़न इला महल्लिही। इधर देखिए भाई, याद रखो जिस औरत से कोई इंसान निकाह कर लेता है तो ये जो इसकी मनकूहा है इसको मौतुआ करार दिया जाता है, यानी मौतुआ होने का इस पर हुक्म लगा दिया जाता है। मौतुआ वो औरत जिससे सोहबत की जा चुकी। तो कोई शख्स जब किसी औरत से निकाह करता है, अभी उसने बेशक उससे सोहबत नहीं की अपनी बीवी से, लेकिन ये हुक्मन मौतुआ है, यानी इस पर भी हुक्म लगा दिया गया कि गोया ये इससे सोहबत कर चुका है। इसी तरह बांदी है भाई, बांदी, बांदी आप जानते हैं कि कोई शख्स बांदी का जब मालिक हो तो आका के लिए बांदी से सोहबत जायज होती है, लेकिन बांदी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई शख्स बांदी को खरीद ले, उसका मालिक बन जाए, उसको मौतुआ करार नहीं दिया जाएगा यहां तक कि आका बाकायदा उसके साथ सोहबत कर ले। जब आका बाकायदा उससे सोहबत कर लेगा अब यह मौतुआ बन गई, जबकि मनकूहा जो है वहां निकाह करते ही उसको मौतुआ करार दिया जाएगा, यानी वो हुक्मन मौतुआ है, उस पर मौतुआ होने का हुक्म लगा दिया जाएगा। तो सवाल पैदा होता है कि ये फर्क क्यों किया गया भाई, औरत से निकाह किया वो औरत भी हलाल उसके लिए, बांदी को खरीद लिया बांदी का मालिक बन गया तो ये बांदी भी उसके लिए हलाल हो गई, दोनों औरतें उसके लिए हलाल हैं, लेकिन एक पर मौतुआ होने का हुक्म लगा दिया जाता है और दूसरी पर मौतुआ होने का हुक्म नहीं लगाया जाता जब तक हकीकतन उससे वती न कर ले भाई। तो जवाब यह कि निकाह किया ही वती के लिए जाता है, कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है वहां यही मकसद होता है कि यह औरत उसके लिए हलाल हो जाए, औरत उसके लिए हलाल हो जाए। तो निकाह के अंदर चूंकि मकसद ही वती और सोहबत है तो लिहाजा इसलिए मनकूहा जो है उस पर मौतुआ होने का हुक्म लगा दिया जाता है कि ये क्या है, इस शख्स की मौतुआ है, इससे ये सोहबत कर चुका है। जबकि बांदी उसको तो वती के लिए नहीं खरीदा जाता, उसको तो कामकाज के लिए खरीदा जाता है। हां जब वो ममलूका हो गई उस तो मालिक के लिए सोहबत भी जायज हो जाती है, लेकिन उसकी मर्जी है मालिक की उससे सोहबत करे या न करे। तो बांदी को कामकाज के लिए खरीदा जाता है, सोहबत के लिए अमूमन नहीं खरीदा जाता, तो उस पर मौतुआ होने का हुक्म नहीं लगाया जाएगा जब तक आका उससे सोहबत न कर ले। जाब्ता समझ में आ गया कि मनकूहा निकाह करते ही क्या बन गई, मौतुआ बन गई, यानी उस पर हुक्म लगा दिया गया। इसी तरह साहिब हिदायत ने आपको बताया कि मिलके यमीन के जरिए भी दो बहनों को जमा करना बेतबार वती के ये जायज नहीं, यानी दो बांदियां हो इंसान की और वो दोनों बहनें हैं और दोनों से वो सोहबत कर ले, ये उसके लिए जायज नहीं है भाई। अब एक शख्स है उसकी मिल्कियत में दो बहनें हैं, उसकी बांदियां हैं, इनमें से एक के साथ वो सोहबत करता है तो ये उसकी मौतुआ है। अब बाद में उसका इरादा बना दूसरी बहन से भी सोहबत करने का, तो फुकाहा फरमाते हैं कि ये जायज नहीं, इल्ला ये कि पहली बांदी को अपने ऊपर हराम कर ले किसी भी तरीके से। इसलिए क्योंकि एक बहन से ये वती करता है, दूसरी से भी वती करेगा, तो ये तो इसने दोनों बहनों को वती के एतबार से जमा कर दिया, लिहाजा पहले दूसरी बहन जो उसकी मौतुआ है उसको अपने ऊपर हराम कर दे, यानी वो बहन किसी को और को बेच दे या किसी को तोहफे में दे दे, हिबा कर दे, यानी किसी दूसरे को मालिक बना दे। जब किसी दूसरे को मालिक बनाया तो इसकी मिल्कियत से वो बांदी निकल गई, इस पर हराम हो गई। या इस बांदी का किसी से निकाह करवा दे, याद रखो जब बांदी का किसी से निकाह करवा दिया जाता है तो अब वो सिर्फ खावंद के लिए हलाल है, अब आका के लिए उस बांदी से सोहबत जायज नहीं, या इसी तरह अगर एक बांदी कई अफराद के दरमियान मुश्तरक हो तो इस सूरत में भी किसी के लिए भी उससे सोहबत जायज नहीं होती। मसलन जैद और अमर दोनों ने मिलकर एक बांदी खरीदी है खिदमत के लिए कि चंद दिन वो जैद के घर खिदमत का काम किया करे और चंद दिन अमर के घर खिदमत का काम किया करे। तो ये जो बांदी दो अफराद की मुश्तरका है जैद और अमर की, जैद और अमर दोनों के लिए यह हराम है, दोनों में से किसी एक के लिए भी उससे सोहबत जायज नहीं। तो बांदी से कब सोहबत जायज होगी? जब पूरी बांदी एक ही शख्स की मिल्कियत में हो। भाई तो मसला मैं जिक्र कर रहा था, एक शख्स की मिल्कियत में दो बहनें हैं और बांदियां हैं, उनमें से एक के साथ ये सोहबत करता है, अब ये दूसरी के साथ भी सोहबत करना चाहता है तो ये जायज नहीं है, इल्ला ये कि पहली वाली बांदी को अपने ऊपर हराम कर ले कि ये बांदी किसी को बेच दे या इसका किसी और से निकाह करवा दे या इस बांदी का कुछ हिस्सा दूसरे को बेच दे। तो जब कुछ हिस्सा भी बेचेगा तो बांदी मुश्तरका हो जाएगी और मुश्तरका बांदी के साथ किसी भी मालिक के लिए सोहबत जायज नहीं। तो जब ये आका अपनी पहली बांदी को अपने ऊपर हराम कर लेगा तो अब इस बांदी की जो बहन है वो इस आका के लिए हलाल हो जाएगी। सूरत समझ में आ गई? इसी तरह दूसरी सूरत बनाए भाई, एक शख्स है उसकी मिल्कियत में दो बहनें हैं और उसको मसले का पता नहीं, वो दोनों से सोहबत कर लेता है। याद रखो दोनों बहनें अब इस पर हराम हो गई। उसने दोनों से सोहबत कर ली तो वती के एतबार से दो बहनों को जमा कर लिया और आपने जाब्ता पढ़ा है कि जैसे दो बहनों को निकाह के एतबार से कोई शख्स जमा नहीं कर सकता, इसी तरह दो बहनों को वती के एतबार से भी कोई शख्स जमा नहीं कर सकता। तो इस शख्स को मसले का पता नहीं था, इसने दोनों से सोहबत कर ली, बाद में इसको मसले का पता चला कि भाई ये तो अब दोनों आप पर हराम हो चुकी हैं। तो अब याद रखो अब इसके लिए दोनों में से किसी एक से भी सोहबत जायज नहीं, इल्ला ये कि इनमें से एक को अपने ऊपर हराम कर ले। जब एक को अपने ऊपर हराम कर लेगा, मसलन वो एक बांदी को पूरा बेच दिया या उसका कुछ हिस्सा बेच दिया या उस बांदी का किसी से निकाह करवा दिया, तो अब फिर दूसरी वाली इसके लिए हलाल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब आइए मसले पर जो मतन के अंदर साहिबे हिदाया जिक्र फरमाएंगे। मसला ये, एक शख्स है, एक औरत उसकी बांदी है और ये उसके साथ सोहबत करता है। अब ये जो मालिक है इसका इरादा बना अपनी इस बांदी की बहन से निकाह कर ले, तो अब एक बहन इसकी ममलूका है और दूसरी बहन से आका निकाह करना चाहता है तो शरअन ये जायज है, ये उससे निकाह कर सकता है। क्या कर सकता है? निकाह। तो ये मसलन उस दूसरी बहन से निकाह कर लेता है, तो ये जिससे इसने निकाह कर लिया ये भी मौतूआ हो गई हुक्मन। ये क्या हुई? मनकूहा क्या होती है? हुक्मान मौतुआ। तो ये जिस बहन से इसने निकाह किया ये मौतुआ हुई हुक्मन, और वो जो इसकी ममलूका बांधी है वो है मौतुआ हकीकतन, उसे हकीकतन ये वती करता है। तो एक बहन क्या हुई? मौतुआ हुक्मन। दूसरी क्या हुई? मौतुआ हकीकतन। तो ये शख्स जामे बैनल उख्तैन हो गया वती के एतबार से, इसने दो बहनों को जमा कर दिया वती के एतबार से। बात समझ में आ रही? अगरचे एक मौतुआ है हकीकतन और एक मौतुआ है हुक्मन, लेकिन है तो दोनों मौतुआ, और शरीयत ने तो दो बहनों को वती के एतबार से जमा करने से मना फरमाया है। और मैंने वो सूरत जिक्र की थी, अगर एक शख्स की मिल्कियत ने दो बहनें हैं और दोनों से उसने लाइल्मी में सोहबत कर ली तो दोनों उस पर हराम हो जाएंगी। यहां पर भी ये शख्स जो है क्या बन गया? जामिअ बैनल उख्तैन हो गया वती के एतबार से, अगरचे एक हकीकतन मौतुआ है और एक हुक्मन, लेकिन है तो दोनों मौतुआ, और जब दोनों बहनें मौतुआ हो तो दोनों हराम हो जाती हैं, एक के साथ भी सोहबत जायज नहीं होती इल्ला ये कि दोनों में से एक को अपने ऊपर हराम कर ले। तो यह शख्स भी क्या करेगा? या तो इस जिससे निकाह किया है इसी को छोड़ दे, जब तलाक देगा तो यह मनकूहा हराम हो गई, अब वो बांदी के साथ सोहबत इसके लिए फिर जायज हो गई, या इस बांदी को अपने ऊपर हराम कर ले, यानी ये पूरी बांदी किसी को बेच दे या इसका जुज किसी को बेच दे या इस बांदी का किसी से निकाह करवा दे, तो जब ये बांदी इस पर हराम हो जाएगी तो अब इसकी जो मनकूहा है वो इसके लिए हलाल हो जाएगी। मसला समझ में आ गया? अब देखिए किताब पर कहते हैं, फईन तज़व्वजा उख्ता अमतिन लहू कद वतिअहा सहन निकाहू, फईन तज़व्वजा उख्ता अमतिन लहू, अमतुन ये नकेरा है और लहू इसके बाद जार मजरूर आया। और याद रखें, नकेरा के बाद जार मजरूर आ जाए और वो किसी से न जुड़ रहा हो तो वो उसी नकेरा की सिफत बनेगा। तो यहां पर भी ये लहू अमतिन की सिफत बनेगा, ऐ अमतिन साबितातिन लहू फइन तज़व्वजा उख्त अमतिन साबितातिन लहू। अमतिन ऐसी बांधी, साबितातिन लहू जो उसके लिए साबित है, यानी जो उसकी है। ये यूं कहें, साबितातिन के बजाय ममलूकतिन निकाल लें, जो आपने मुतअल्लक निकालना है। अमतिन ममलूकतिन लहू, ऐसी बांधी जो उस आदमी की ममलूक है, यानी उसकी अपनी बांधी, उसकी अपनी बांधी। तो अमतिन लहू का हम क्या तर्जमा करेंगे, अपनी बांधी। फइन तज़व्वजा उख्ता अमतिन लहू, और अगर किसी शख्स ने निकाह कर लिया उख्ता अमतिन लहू अपनी बांदी की बहन से, किसे निकाह किया, अपनी बांदी की बहन से निकाह कर लिया, कद वती आहा, इस हाल में कि इस बांदी के साथ ये सोहबत कर चुका है, ये बांदी इसकी हकीकतन मौतुआ है भाई, सह निकाह हो, तो ये निकाह सही है, ये निकाह हो जाएगा। सूरत समझ में आ रही है, बांदी से वो सोहबत कर चुका है, अब उसकी बहन से निकाह करना चाहता है, तो कहते हैं जायज है, निकाह कर सकता है, लेकिन फिर वती नहीं कर सकेगा किसी एक से भी। निकाह तो जायज होगा लेकिन वती अब किसी से भी जायज नहीं होगी, इल्ला ये कि दोनों में से एक को अपने ऊपर हराम कर दे। तो कहते हैं फइन तज़व्वजा उख्ता अमतिन लहू, अगर किसी शख्स ने निकाह कर लिया अपनी बांदी की बहन से, कद वतिअहा, इस हाल में कि इस बांदी के साथ ये शख्स सोहबत कर चुका है, सहन निकाह हो, तो ये निकाह सही होगा, ये निकाह जायज हो जाएगा। भाई क्यों, निकाह क्यों जायज होगा, एक बहन इसकी बांदी है तो दूसरी बहन से तो निकाह जायज ही नहीं होना चाहिए। कहते हैं नहीं नहीं, निकाह जायज है, निकाह में कोई मान्या नहीं। क्यों नहीं माने, देखिए भाई, कहते हैं सहन निकाह, निकाह सही हो जाएगा, लिसुदूरी ही मिन अहली ही मुजाफन इला महली ही, लिसुदूरी ही मिन अहली ही, इसलिए क्योंकि ये निकाह सादिर हुआ है, ये पेश आया है, मिन अहली ही अहले निकाह से, वो शख्स जो निकाह का अहल है भाई, ये जो आका है जो निकाह करना चाहता है, ये आकिल है, बालिग है, आजाद है, ये अपना निकाह करना चाहे तो भाई, जो भी आकिल बालिग और आजाद हो वो अपना निकाह अपनी मर्जी से कर सकता है। तो ये शख्स क्या है, अहले निकाह हुआ, ये निकाह कर सकता है, और किससे निकाह करना चाहता है, अपनी बांदी की बहन से निकाह करना चाहता है, तो वो बहन इसके लिए अजनबिया है भाई, वो बहन इस आदमी के लिए अजनबिया है, वहां कोई मान्या मौजूद नहीं है। आप कहेंगे भाई इसकी बहन इसकी ममलूका है, भाई दो बहनों को निकाह के अंदर जमा करने से शरीयत ने मना किया है, इसी तरह दो बहनों को वती के एतबार से जमा करने से शरीयत ने मना किया है। तो अगर इसकी बहन से अब निकाह करेगा तो निकाह में तो दोनों नहीं, एक तो बांदी है और दूसरी क्या हो जाएगी, मनकूहा, तो निकाह के एतबार से दोनों जमा नहीं, और नीज वती के एतबार से भी दोनों जमा नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि एक से वती की है, दूसरी से तो अभी वती नहीं की। बात समझ में आ रही है, तो कहते हैं लिसुदूरी ही मिन अहली ही, इसलिए क्योंकि निकाह जो है सादिर हुआ है, पेश आया है उस शख्स से जो अहले निकाह है, यानी आकिल बालिग आजाद है, और मुजाफन इला महली ही, इस हाल में कि इस निकाह की निस्बत हो रही है अपने महल की तरफ, यानी वो निकाह का महल भी है, वो बांदी की बहन निकाह का महल भी है, उसे निकाह हो सकता है, वो एक अजनबिया औरत है, ना वहां कराबत रिश्तेदारी वाला कोई ताल्लुक है और ना कोई रिजात वाला ताल्लुक वगैरह है भाई। बात समझ में आ गई, तो उसके साथ निकाह जायज है। वह ईदा जाजा, और जब इस औरत के साथ निकाह जायज हो गया तो लायत उल अमता, अब ये आका जो है अपनी बांदी से सोहबत नहीं कर सकता। वह इन कान लम यत इल मनकूहता, अगरचे इसने इस मनकूहा से सोहबत नहीं की, अगरचे अभी इसने मनकूहा से सोहबत नहीं की, लेकिन निकाह करते ही बांदी क्या हो गई, हराम हो गई इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि बांदी मौतुआ है हकीकतन, और मनकूहा क्या बन गई, मौतुआ है हुक्मन, तो दोनों मौतुआ हो गई, और जब दोनों मौतुआ हैं तो अब दोनों में से एक को अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, हराम करना पड़ेगा। तो कहते हैं वह इनकान लम यत इल मनकूहता, अगरचे इसने मनकूहा से सोहबत नहीं की अभी तक, ले अनल मनकूहता मौतू अतुन हुक्मन, इसलिए क्योंकि जो मनकूहा होती है हुक्मन वो मौतुआ होती है, वला यत उल मनकूहता लिल जमई, और ये शख्स मनकूहा जो है इसके साथ सोहबत नहीं कर सकता लिल जमई जमा की वजह से, वरना क्या खराबी लाजिम आएगी, जमा बैनल उख्तैन लाजिम आएगा वती के एतबार से। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वलायत उल मनकूहता लिल जमई, और मनकूहा से भी ये सोहबत नहीं कर सकता, वरना तो हकीकतन जमा करना लाजिम आएगा वती के एतबार से, इल्ला इदा हर्रमल मौतू अताला नफसी ही, मगर उस वक्त जब ये शख्स हराम कर दे इस मौतुआ बांदी को, अला नफसी ही अपने ऊपर, भी सबब मिनल असबाबी, असबाब में से किसी सबब के जरिए, मुख्तलिफ तरीकों में से किसी तरीके के जरिए क्या कर ले, इस बांदी को अपने ऊपर हराम कर ले, यानी इसका निकाह करवा दे या किसी को बेच दे, तो ये बांदी हराम हो जाएगी और फिर इसके लिए उस मनकूहा से सोहबत हलाल हो जाएगी। तो कहते हैं फहीन इदियत उल मनकूहा, तो उस वक्त ये मनकूहा से सोहबत कर सकता है, ले आदमिल जमाई वत अन, इसलिए क्योंकि फिर दोनों को वती के एतबार से जमा करना नहीं होगा, क्योंकि एक तो हराम हो गई उस पर, वयत उल मनकूहा इल्लम यकुन वती अल ममलूकता। भाई दूसरी सूरत, दूसरी सूरत भाई, एक शख्स है उसकी मिल्कियत में एक बांदी है और इस बांदी से इसने सोहबत नहीं की, ये सिर्फ कामकाज के लिए इसने रखी हुई है, अब इस बांदी की बहन से निकाह करना चाहता है, तो कहते हैं निकाह कर सकता है और निकाह के बाद वती भी अब उससे कर सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मनकूहा के साथ वती कर रहा है, बांदी तो इसकी मौतुआ है ही नहीं, तो यहां जमा बैनल उख्तैन वत अन लाजिम नहीं आएगा, वती के एतबार से दो बहनों को जमा करना लाजिम नहीं आता। तो कहते हैं वयत उल मनकूहता, और मनकूहा से वो शख्स सोहबत कर सकता है, इन लम यकुन वती अल ममलूकता, अगर इसने अपनी ममलूका बांदी से सोहबत नहीं की, वो उसकी मौतुआ नहीं है, तो फिर मनकूहा से वती कर सकता है। मसला भी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते हैं लियादमिल जमई वत अन, इसलिए क्योंकि इस सूरत में वती के एतबार से जमा करना लाजिम नहीं आता, क्योंकि ये बांदी के साथ तो ये वती करता ही नहीं है, तो ये वती के एतबार से जमा करना लाजिम नहीं आएगा, तो मनकूहा से वती कर सकता है। इदिल मरकूकतु लैसत मौतू अतन हुक्मन, इसलिए क्योंकि मरकूका जो बांदी होती है, मरकूका मरकूका यानी बांदी, ममलूका ममलूका, रिक्कुन गुलामी को कहते हैं, किसको?
गुलामी,
रिक्कुन गुलामी को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं रकीक गुलाम, और बांदी को कहते हैं रकीका रकीका, इसी तरह मरकूका यानी वही ममलूका भाई, बांदी भाई। इदिल मरकूकतु लैसत मौतूअतन हुक्मन, इसलिए क्योंकि बांदी जो होती है वो हुक्मन मौतूआ नहीं होती, बीवी तो हुक्मन मौतूआ होती है लेकिन बांदी हुक्मन मौतुआ नहीं होती, बांदी से वती करेगा तो वो मौतुआ बनेगी, उससे पहले वो हुक्मन मौतुआ नहीं। नहीं तवज्जो, एक शख्स है उसकी मिल्कियत में पहले से बांदी मौजूद है, इससे ये सोहबत नहीं करता, तो ये हकीकतन मौतुआ है, बांदी हकीकतन मौतुआ नहीं क्योंकि इसे ये वती करता ही नहीं, सोहबत करता ही नहीं, और हुक्मन भी मौतुआ नहीं है क्योंकि बांदी हुक्मन मौतुआ नहीं होती, वो मनकूहा होती है, तो बांदी ना हकीकतन मौतुआ हुई और ना हुक्मन मौतुआ हुई, और अब इस बांदी की बहन से ये निकाह करता है तो उसके लिए सोहबत जायज है क्योंकि दो बहनें वती के एतबार से जमा नहीं हो रही। बात समझ में आ गई? चलिए बस, बेहादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।